ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्योंकि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन शुरू कर रहे हैं तो आज के क्लास के लिए हमने चौथे स्कंद का एक श्लोक चुना है जिसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी प्रचार के सेवा की चर्चा करते हैं। ठीक है, ये कैंटो 4 चैप्टर 31 टेक्स्ट 19। दयाया सर्व भूतेषु संतुष्ट येन केन वा सर्वेन्द्रियोपा शांति आचार तुष्यादियशु जनार्दन दयाया सर्वापतेषु संतुष्ट येन केन वा सर्वेन्द्रियोपा शांति आचार तुष्यादियशु जनार्दन माता जी शब्दार्थ
दया, दया दिखाने से सर्वभूतेषु समस्त जीवों पर संतुष्टया संतुष्ट होने से येन केन वा किसी न किसी तरह सर्वेन्द्रिया समस्त इंद्रिया उपशांत्या बस में करके च भी तुष्यते संतुष्ट होता है आसो तुरंत जनार्दन समस्त जीवों का स्वामी। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। समस्त जीवों पर दया करने से एन के न प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। दोहराइए, समस्त जीवों पर दया करने से एन के न प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। तात्पर्य, ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा भक्त भगवान को संतुष्ट कर सकता है। इनमें सबसे पहली है दया सर्वभूतेषु, अर्थात समस्त बद्ध जीवों पर दया दिखाना। दया दिखाने की सर्वोत्तम विधि है कृष्ण भक्ति को फैलाना। संपूर्ण संसार इस ज्ञान के अभाव से पीड़ित है। लोगों को जानना चाहिए कि भगवान ही सभी वस्तुओं का मूल कारण है। ऐसा समझकर प्रत्येक व्यक्ति को भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर चुके हैं, उन्हें संसार भर में कृष्ण भक्ति का उपदेश करना चाहिए, जिससे लोग उसे ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना सकें। सर्वभूतेषु शब्द सार्थक है, क्योंकि यह न केवल मनुष्यों के लिए वरन 84 लाख जनियों में प्रकट होने वाले समस्त जीवों के लिए आया है। भक्त न केवल मानव जाति को लाभ पहुंचा सकता है, अपितु समस्त जीवों को भी। प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। जब हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो पौधे, पशु तथा कीड़े तक लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करके मनुष्य समस्त जीवों पर दया करता है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने के लिए भक्तों को सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहना चाहिए। नारायण पराशर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गा पवर्ग नरकेश्व अपि तुल्यार्थ दर्शिन। भक्त को उपदेश कार्य के लिए यदि नरक में भी जाना पड़े तो उसे सब परवाह नहीं करनी चाहिए। यद्यपि भगवान वैकुंठ में हैं, किंतु वे एक सुअर के शरीर में भी वास करते हैं। नरक में उपदेश करते हुए भी शुद्ध भक्त शुद्ध बना रहता है, क्योंकि वह निरंतर भगवान की संगति में रहता है। इस दशा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी इंद्रियां वश में रखनी होती हैं। जब उसका मन भगवत भक्ति में रत होता है तो इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती हैं।
ओम ज्ञानतिमिरंदास्य ज्ञानंजना शलाक्य चाक्षुर्मीलितानि येन तस्मै श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केन वा सर्वेन्द्रियपाशान्त्या च तुषादशु जनार्दन। ये श्लोक आप सब भक्तों को कंठस्थ कर लेना चाहिए, खास करके जो प्रचारक भक्त हैं। आप में से किसी भक्त ने इस श्लोक को कंठस्थ किया हुआ है? नहीं। तो ये श्लोक का उच्चारण नारद मुनि कर रहे हैं। नारद मुनि जैसे आप जानते हो महाजन है, संयमो नारद संभो कौमार कपिलो मनु प्रलदो जनको भीष्मो बलीर भाई ये सके हुए हूं। 12 महाजन माने जाते हैं, जिनमें एक है नारद मुनि। नारद मुनि उपदेश किसे दे रहे हैं? प्रचेतस को। प्रचेतस महाराज प्रचीन परिषद के पुत्र थे। उन्होंने बड़ी गहरी तपस्या उठाई थी जिसके द्वारा भगवान प्रकट हुए थे, और यहाँ इस अध्याय में नारद मुनि प्रचेतस के माध्यम से हम सबको क्या शिक्षा दे रहे हैं। तो इस श्लोक में नारद मुनि 3 महत्वपूर्ण सेवाओं पर बल दे रहे हैं, ज्यादा नहीं, केवल 3। कौन बताएगा ये 3 क्या हैं? पहला है दयाया, दूसरा है संतुष्ट, तीसरा है सर्वेन्द्रियपा। नारद मुनि कहते हैं कि अगर आप इन 3 विधियों का पालन करोगे तो भगवान को संतुष्ट कर पाओगे। तो आप में से कितने भक्त हो जो भगवान को संतुष्ट करना चाहते हो? सब। अच्छा, तो फिर आपको इस संदेश का पालन करना चाहिए। सबसे पहले क्या है? दयाया। तो दया की भावना भक्तों में होनी चाहिए। भगवतम के 3रे स्कंद में कपिलदेव भगवान ने साधुओं के लक्षणों का वर्णन किया है। साधुओं के लक्षणों का वर्णन करते हुए कपिलदेव भगवान कहते हैं, तितिक्षा करूनी कहा सूरदास सर्वा दहीनाम अजतन सत्व संता साधवा साधु भूषणा। साधु के अनेक गुणों में एक गुण है करूनी कहा दया की भावना। तो दया अनेक रूपों से आप प्रकट कर सकते हो, जैसे कि भौतिक समाज में क्या माना जाता है, अब हॉस्पिटल बना लो, किसी का इलाज करा दो, शिक्षा दे दो, ये है दया प्रकट करने के साधन। कई बार जब हम लोग प्रचार के दौरान किसी से चंदा मांगते हैं तो लोग कहते हैं स्वामी जी मंदिर बनाने में क्या पड़ा है, हॉस्पिटल बनाओ। पर असली दया क्या है? असली दया है लोगों को वो शिक्षा देना जिसके माध्यम से वो जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सके, ये है असली दया। और वैष्णव के विषय में कहा गया है परा दुखा दुखी। वैष्णव जब देखता है कि कोई व्यक्ति भौतिक कार्य में जुड़ा है, वो जानता है बिना किसी शंका के कि भौतिक कार्यों के द्वारा संतुष्टता प्राप्त नहीं हो सकती। भौतिक कार्यों के द्वारा अगर आपको खुशी प्राप्त भी हो तो यह अस्थाई है, थोड़े समय के लिए है कि नहीं। तो वैष्णव का भाव क्या रहता है, लोगों को उद्धार, लोगों का उद्धार किया जाए, लोगों को शिक्षा दी जाए। प्रहलाद महाराज की शिक्षा अब भगवतम के सातवें स्कंद में प्राप्त करते हो। प्रहलाद महाराज आत्मज्ञानी थे, जब वो माता के गर्भ में थे नारद मुनि के द्वारा उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। प्रहलाद महाराज ने कहा सुचेत तो विमुखो सा चेत सा इंद्रियार्था, जब मैं सोचता हूं किस प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं अत्यंत दुखी होता हूं। तो प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में कहा है कि जो प्रचार की सेवा है ये सबसे महत्वपूर्ण है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा, कौन कहेगा? क्या सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है जो मैं प्रचार करता है, उसे ज्यादा प्रिय न हुआ है न होगा। तो प्रचार की सेवा इस विषय पर बल भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दी। भगवत शास्त्र में अनेक श्लोक हैं, जैसे हमने अभी आपको चौथे स्कंद का एक श्लोक पढ़कर सुनाया, सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज कहते हैं, और भगवद गीता जिसके द्वारा वैदिक शास्त्र का सार प्रस्तुत किया गया है। कुछ दिन में ही आप गीता जयंती मनाओगे और गीता जयंती के उपलक्ष हमारे भक्त प्रयास करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में गीता का संदेश आगे पहुंचाने के लिए। तो गीता के सार में भगवान क्या कह रहे हैं, 18वें अध्याय में पूरे गीता का सार है। भगवान कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है जो मेरा प्रचार कर रहा है, उसे ज्यादा प्रिय अगर हुआ है न होगा। तो ये जो प्रचार की सेवा है ये कोई साधारण सेवा नहीं, सब सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। चैतन्य महाप्रभु जो परम भगवान के अवतार है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे आन्या, यही राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने साथियों को क्या आदेश दिया था, घर घर जाकर प्रचार करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जी के जो साथी थे उन्हें ये आदेश था घर घर प्रचार करो, सिर्फ रथ यात्रा के समय वो वापस आते थे, बाकी समय घर घर जाकर प्रचार करो। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बड़े सुंदर श्लोकों के द्वारा ये वर्णन करते हैं, कैसे चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद हरिदास को कहा, जाओ घर घर जाकर प्रचार करो। एक दिन महाप्रभु नंबरदेव में थे, उन्होंने नित्यानंद को बुलाया, नामाचार्य हरिदास ठाकुर को बुलाया। उन्हें क्या कहा, नित्यानंद सुनो, हरिदास सुनो, जाओ बाहर और मेरे आदेश का प्रचार करो। क्या कहा, जाओ बाहर और मेरी शिक्षा का प्रचार करो। पर ये आदेश किसको दिया, भगवान नित्यानंद को और नामाचार्य हरिदास ठाकुर। दो प्रकार के भक्त होते हैं, गोष्ठ नंदी और भजन नंदी। भजन नंदी उन्हें कहा जाता है जो केवल भजन ही करते हैं और उनकी रुचि चिंता अपने उद्धार की होती है। गोष्ठ नंदी उसे कहते हैं जो कि भजन भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर गोष्ठ नंदी भक्त थे, जाप भी करते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद हरिदास जाओ घर घर और प्रचार करो। इसके अलावा तुम्हें और कोई बात नहीं करनी चाहिए, महाप्रभु ने कहा। अगर तुम घर घर जाओगे तो केवल यही संदेश का प्रचार करना, यानी कि हम घर घर जाने प्रचार करने और हम दुनियादारी की चर्चा करें, यानी कि हम घर घर जाने प्रचार करने हम देखें हमारा इसमें क्या स्वार्थ है, हमें क्या मिलेगा। महाप्रभु ने स्पष्ट कहा कि घर घर जाओ और कोई चर्चा मत करो, और पूरे दिन की समाप्ति पर मुझे आकर बताओ तुमने कितना प्रचार किया है। आप समझे, महाप्रभु ने ये नहीं कहा जाओ नित्यानंद हरिदास घर घर जाकर प्रचार करो। उन्होंने कहा घर घर जाओ और इस शिक्षा के अलावा किसी विषय की चर्चा मत करो, और लौटकर मुझे शाम को बताओ तुमने क्या प्रचार किया है। जब चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जनम कर रहे थे, गुंडीचा मार्जनम आप जानते हो, गुंडीचा महाराजेन्द्र दमना की पत्नी का नाम था और ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथपुरी में। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ पूरे मंदिर को साफ कर रहे थे, फर्श, छत, दीवारें, कई भक्त जुड़े हुए थे, दूर दूर से बाल्टी से पानी आ रहा था, महाप्रभु खुद रगड़ रहे थे। और महाप्रभु ने सब भक्तों को कहा था मैल इकट्ठा करने के लिए। तो मैल जब इकट्ठा करते थे भक्त, तो महाप्रभु जाकर देखते थे हर भक्त के पास कितनी मैल उसने इकट्ठी की है, और अगर किसी ने कम गंध इकट्ठा किया था तो महाप्रभु से कहते थे ज्यादा अच्छी तरह करो। और जो भक्त ज्यादा मैल इकट्ठा करते थे उन्हें कहते थे इनको शिक्षा दो और सफाई अच्छी तरह कैसे करने के लिए। तो सफाई के विषय में भी आप देखते हो कि महाप्रभु देख रहे थे कौन ज्यादा गंध इकट्ठा करता है कौन कम। भक्ति सिद्धांत जी ने इस लीला के संबंध में कहा है कि इस लीला का असली संदेश है कि हमें हमारे हृदय की मैल को दूर करना है, और हृदय की मैल कैसे दूर होगी, महामंत्र के उच्चारण के द्वारा। तो महाप्रभु ने कहा जाओ घर घर प्रचार करो और शाम को लौटकर मुझे संदेश दो कितना प्रचार किया। जब प्रभुपाद जी पृथ्वी पर थे और प्रचारक भक्त बाहर जाते थे, जब वो शाम को आते थे प्रभुपाद जी को मिलने के लिए, तो प्रभुपाद जी पूछते थे प्रचार कैसे हुआ। और उन दिनों में अगर कोई एक या दो मेंबर भी बना के आता था प्रभुपाद जी बड़े खुश होते थे। तो उसी विधि के अनुसार इस्कॉन के मंदिरों में हम लोग रोज सुबह पिछले दिन का प्रचार का स्कोर पढ़कर भगवान को सुनाते हैं, है ना। महाप्रभु ने कहा मुझे आकर रिपोर्ट दो कैसा प्रचार हो रहा है। तो रोज सुबह आप सुनते हो कि पढ़ा जाता है कि इस भक्त ने कितना प्रचार किया। तो ये महाप्रभु जी की शिक्षा के आधार पर है चैतन्य भगवान। तो महाप्रभु ने आगे क्या कहा, अगर कोई ये संदेश को स्वीकार नहीं करेगा तो मैं सुदर्शन चक्र का उपयोग करूंगा। क्या वो आप लोग नहीं कर सकते, केवल भगवान ही सुदर्शन चक्र का उपयोग कर सकते हो। तो महाप्रभु ने इस प्रकार अपने भक्तों को आदेश दिया। तो महाप्रभु के आदेश को स्वीकार करके नित्यानंद और हरिदास गए घर घर प्रचार करने के लिए। उन्होंने लोगों से क्या कहा, कृष्णा प्राण कृष्णा दान कृष्णा से जीवना, हेना कृष्णा बोले भाई ऐ एका मना। कृष्णा प्राण, कृष्णा आपका प्राण है। असली प्राण कौन है, भगवान। कृष्णा धाना, कृष्णा असली धन है। हम सोचते हैं कि असली धन है बैंक बैलेंस वगैरह, पर नित्यानंद हरिदास ने क्या कहा, कृष्णा असली धन है। तो आप लोग जो सेवा करते हो आपको भूलना नहीं चाहिए, ये है असली धन। भगवान का नाम ये है असली धन, भगवान की सेवा ये है असली धन। जो भौतिक धन जिसके पीछे पूरा समाज मोहित है, ये असली धन है क्या, है? आपके साथ जाएगा नहीं, आपका स्विस बैंक अकाउंट जाएगा नहीं, पर ये हाई नाम का अकाउंट है वो सा जाएगा। तो नित्यानंद नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने क्या कहा, कृष्णा प्राण कृष्णा धन, कृष्णा से ही जीवन, कृष्णा ही तुम्हारा असली जीवन है। ओ भाई तुम कृष्णा का नाम लो बड़े ध्यान से। तो ये है भक्तों का भाव, घर घर जाकर लोगों को ये सूचना देना, कृष्णा प्राण तुम्हारा प्राण कृष्णा है, कृष्णा धन कृष्णा से ही जीवन है, ये है तुम्हारा असली धन। तो इस प्रकार दोनों नित्यानंद और हरिदास ठाकुर घर घर जा रहे थे, घर घर, जैसे आज के वातावरण में हमारे कई प्रचारक घर घर जाते हैं प्रचार करने के लिए। तो नित्यानंद और नामाचार्य भी घर घर जा रहे थे। दोनों ने सन्यासियों के वस्त्र पहने थे और जब वो घर घर जाते थे लोग उनका स्वागत करते थे और कहते थे हमारा क्या सौभाग्य है सन्यासी महात्मा आ गए हैं हमारे घर में। और घर घर जाकर क्या कहा जा रहा था, नित्यानंद हरिदास बोले ए भिक्षा बोलो कृष्णा भाजो कृष्णा करो कृष्णा सिखा। उन्होंने सबके घर गए और कहा हम आपसे भीख मांगना चाहते हैं। क्या भीख, आप कृपा करके बोलो कृष्णा। बोलो कृष्णा का अर्थ क्या है, कृष्णा का नाम लो, भजन कृपा जो कृष्णा, कृष्णा की उपासना करो। ऐसे भगवान आर्य विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं जिनकी हम उपासना करते हैं। आगे करो कृष्णा शिक्षा, कृष्णा की शिक्षा को अपनाओ। कहा है यह शिक्षा, गीता भगवत में चैतन्य चरितमृत में आप एक कथा पढ़ते हो, वासुदेव वासुदेव विप्र की। वासुदेव विप्र महाप्रभु के बहुत ही ऊंचे कोटि के भक्त है। उन्हें कोढ़ की बीमारी थी, लेप्रेसी, और उनका पूरा शरीर फुंसियों से भरा हुआ था और हर फुंसी में पस थी। उनके शरीर से इतनी बदबू आती थी कि कोई उनके निकट भी नहीं आता था। उनका पूरा शरीर कीड़ों से भरा हुआ था, कीड़ों से। और जब कोई कीड़ा नीचे गिरता था तो उसे उठाकर जोड़ देते थे अपने शरीर के साथ। तो वासुदेव विप्र को पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं दक्षिण भारत की यात्रा में, तो वो गए कुर्मा ब्राह्मण के घर में जहां महाप्रभु निवास कर रहे थे। जब वहां पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि महाप्रभु निकल चुके हैं अपनी यात्रा में, तो बेहोश हो गए शोक में। पर महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान, भगवान है अंतर्यामी। तो महाप्रभु लौटे और महाप्रभु ने उन्हें गले लगाया। जब गले लगाया तो जो उनकी खोड़ की बीमारी थी तुरंत समाप्त हो गई और वो खूबसूरत युवक बन गए। तो उनके मन में ये भय प्रकट हुआ, अब मैं इतना खूबसूरत बन गया हूं कहीं मैं घमंडी नहीं बन जाऊं, क्योंकि भौतिक समाज में आप देखते हो अगर कोई खूबसूरत है तो घमंडित हो जाता है, धनी है तो भी घमंडित हो जाता है, भौतिक शिक्षा प्राप्त की है तो भी घमंडित हो जाता है। तो सबसे पहले तो जब उनका शरीर खूबसूरत युवक का शरीर बन गया, उन्होंने उन श्लोकों की रचना की जिनकी रचना से सुदामा ब्राह्मण ने की है दसवें स्कंद में। सुदामा ब्राह्मण गए थे भगवान को मिलने द्वारका में, और जब घर से निकले तो क्या ले गए थे? थोड़ा सा पफ राइस, पर कुछ मांगे बिना वो लौटे द्वारका के लिए, अपने घर, अपने स्थान के लिए। हालांकि उनकी गरीब पत्नी ने भेजा था इस इच्छा के साथ कि वो अपने धनी मित्र से कुछ मांगेंगे, और भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो हर एक इच्छाओं को समझ लेते हैं। तो जब सुदामा ब्राह्मण लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया क्या बन गई है, महल। उनकी पत्नी जो कि फटे कपड़ों में थी, सजी हुई थी महंगी साड़ी के साथ। तो सुदामा ब्राह्मण समझ गए ये सब संभव हुआ है उनके मित्र की कृपा के कारण। तो उन्होंने बड़े सुंदर श्लोकों में भगवान का गुणगान किया जिन्हें आप भागवतम के दसवें स्कंद में प्राप्त करते हो। तो वासुदेव विप्र जब योग बन गए, उन्होंने जब देखा कि महाप्रभु जी की खास कृपा से ये संभव हुआ है, तो उन्होंने बड़े सुंदर रूप से उन श्लोकों का उच्चारण किया। फिर आगे उन्होंने पूछा कि अब आपकी कृपा से मैं इतना खूबसूरत बन गया हूं, कहीं मैं घमंडित नहीं हो जाऊं? तो विनम्रता के भाव से रहने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है कि अगर आप हरि नाम का उच्चारण सदा करना चाहते हो तो क्या भाव की आवश्यकता है? नादपि तरोरपि अमानी न माना न के देना नहीं सरे। ये महाप्रभु का आदेश कि अगर आप विनम्रता भाव से भक्ति की विधियों का पालन करोगे तो आप सदा हरि नाम कर सकोगे। तो अगर आप सोचोगे मैं इतना बड़ा भक्त हूं, इतना बड़ा नेता हूं, मैंने इतने प्रचार, इतना प्रचार किया है, इतने भक्त बनाए हैं, तो भगवान अपनी कृपा को आपके आपसे ले लेंगे। भगवान कहते हैं कि अगर तुम विनम्रता के भाव से भक्ति करोगे तो सदा हरि का नाम कर सकोगे, पर अगर घमंड आ जाए, गौरव आ जाए, नाम महिमा उसके पीछे आप हो तो हरिनाम आपके जीभ से फिसल जाएगा। तो सुदामा ब्राह्मण जो वासुदेव विप्र का प्रश्न था, मैं कैसे अपने आप को घमंडित होने से बचाऊं, महाप्रभु ने क्या कहा, चैंट हरे कृष्णा एंड प्रेज द ग्लोरीज ऑफ हरे कृष्णा, सदा हरि का नाम लो और हरि के नाम की महिमा का प्रचार करो, इस प्रकार तुम कभी मुझे भूलोगे नहीं और मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो प्रभुपाद जी इस लीला के तात्पर्य में समझाते हैं कि जिस प्रकार महाप्रभु ने वासुदेव विप्र का उद्धार किया और ये आदेश दिया, उसी प्रकार इस संसार के सारे भक्तों का उद्धार हुआ है और सब भक्तों का कर्तव्य बनता है क्या कि वो घर घर जाकर क्या करें, प्रचार करें। तो नित्यानंद और हरिदास घर घर जाकर प्रचार कर रहे थे, कई घरों में वो गए, लोगों ने उनका स्वागत किया, बिठाया और कहा हमारा क्या सौभाग्य है आप आ गए हो हमारे हमें पवित्र बनाने के लिए, बड़े खुश हुए। पर कई घरों में वो गए, लोगों ने दरवाजा भी नहीं खोला, लोगों ने कहा ये निमाई तो पागल है अभी दूसरों को भी पागल बना रहा है। हम लोग जब प्रचार में जाते हो कई लोग प्रशंसा करते हैं कई विरोध करते हैं, तो जब नित्यानंद हरिदास साहब को प्रचार कर रहे थे कई घरों में तो उनका बड़े आदर से स्वागत हुआ, पर कई घरों में वो गए लोगों ने कहा निमाई तो पागल हो गया है अब दूसरों को भी पागल कराए। जब निमाई पंडित ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया नवद्वीप में, जो हिंदू ब्राह्मण थे उन्होंने भी इसका विरोध किया, उन्होंने कहा निमाई तो हमारे धर्म की बेइज्जती करा रहा है, और उन्होंने मुसलमान काजी को शिकायत की। तो ये थी स्थिति। तो कई घरों में जब वो जा रहे थे नित्यानंद हरिदास, लोग कह रहे थे ये तो पागल हो गया है, हमने जब प्रयास किया था शिवा संगम में प्रवेश करने के लिए हमें अंदर नहीं आने दिया, शिवा संगम जो कि हमारे मायापुर चंद्रद्वारा मंदिर के निकट है वहां महाप्रभु अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया। शिवा संगम में ही काजी ने अपने सिपाहियों को भेजकर महाप्रभु के मृदंगा को तोड़ा था, भक्तों के मृदंगा को तोड़ा था। तो शिवा संगम में महाप्रभु जब कीर्तन करते थे दस दस बारह बारह घंटे एक साथ, और उस सभा में जो महाप्रभु के प्रिय भक्त थे उन्हीं को अधिकार था उपस्थित होने के लिए, दूसरों को नहीं। तो कई नवद्वीपवासी महाप्रभु के शत्रु बन गए, उन्होंने कहा आप हमें अंदर आने नहीं देते कीर्तन देखने के लिए। तो कईयों ने उनका अपमान किया, कईयों ने कहा आपने हमें अंदर आने नहीं दिया हम तुम्हें अंदर आने नहीं देंगे पागल हो तुम। तो महाप्रभु नित्यानंद हरिदास ने स्वीकार कर लिया। फिर कई घरों में वो जाते थे, लोगों ने कहा ये जो हैं सन्यासी सन्यासी नहीं हैं, ये हैं किसी चोर के प्रतिनिधि, वो आए हमारे घर में ये देखने के लिए घर में क्या संपत्ति है, फिर चोर आएंगे रात को चुराने के लिए, मारो इन्हें भगाओ भगाओ भगाओ। तो नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को जब कहा जाता था कि वो चोर के प्रतिनिधि हैं चोर के जासूस हैं वो हंसने लगते थे। तो ये मैंने इसलिए आपको उदाहरण दिए क्योंकि आप सब जो प्रचार करोगे, आप भगवद गीता मैराथन करोगे, भगवद गीता बांटने जाओगे, कई स्थानों में आप जाओगे लोग आपका साथ देंगे, लोग कहेंगे हाँ बड़ी शुक्रिया आप आए हो गीता देने के लिए, खासकर गीता जयंती के उपलक्ष्य। पर कई व्यक्ति आपका अपराध भी करेंगे, क्या धंधा करने आ जाते हो बार बार, है ना। और कई आपको ये भी कहेंगे क्या तुमको कमीशन मिल रहा है क्या। पर हमें उस समय यही सोच लेना चाहिए कि अगर नित्यानंद हरिदास ठाकुर को कहा जा सकता है आप चोर के प्रतिनिधि हो, आप तो जासूस हो, तो हमें अगर कोई डांट भी दे तो हमें क्या स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये प्रचार की जो सेवा है ये एक रूप से कठिन सेवा है, क्योंकि इस सेवा में हर व्यक्ति जिससे आप प्रचार करते हो वो साथ थोड़ी देता है। जैसे आप गीता मैराथन में जाओगे, टेबल लगाओगे, दुकान दुकान जाओगे, घर घर जाओगे, ये थोड़ी कि हर व्यक्ति हाँ स्वामी जी आ गए इस्कॉन मंदिर से आइए बैठिए, हाँ सब ऐसा है। अगर सब ऐसा स्वागत करें तो बड़ी अच्छी बात है। तो जब आप प्रचार करने जाओगे ये नहीं कि हर व्यक्ति आपका स्वागत करेगा, कई आपका अपमान करेंगे। नित्यानंद हरिदास ठाकुर को तो कह रहे थे मारो इन्हें मारो इन्हें। मेरे ख्याल से ये तो कोई नहीं कह रहा आज का, आप प्रचार के लिए जाओ कोई ये तो नहीं कहेगा मारो मारो इसे। पर नित्यानंद हरिदास जब घर घर जा रहे थे प्रचार करने के लिए, कईयों ने कहा मारो इसे मारो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप प्रचार करते हो ये नहीं कि हर व्यक्ति सहयोग देगा, पर जब भी हमें दृढ़ होकर प्रचार करना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं निश्चय उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तनार्थ। भक्ति की विधियों में एक है दृढ़ होकर डिटर्मिनेशन के साथ हमें प्रचार करना चाहिए, और ये डिटर्मिनेशन का भाव दृढ़ होने का भाव कैसे आता है, अच्छी साधना के द्वारा। अगर आप भजन क्रिया रखोगे अच्छी तरह, हरि नाम करोगे ध्यान से, अच्छी साधना रखोगे तो फिर प्रचार का भी उत्साह रहेगा। इस श्लोक में नारद मुनि ने तीन महत्वपूर्ण विषयों पर बल दिया है, दयाया, फिर दूसरा क्या था, संतुष्ट। हमें संतुष्ट रहना चाहिए हर स्थिति में, ये नहीं कि हम सदा भौतिक इच्छाओं को प्रकट करते जाए। भौतिक इच्छाओं के विषय में क्या कहा गया है, आप कभी अपनी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर सकते। भागवत में आप महाराज या याति की कथा पढ़ते हो, 10,000 सालों के लिए उन्हें पूरी सुविधा थी इंद्रिय तृप्ति की, परंत में उन्होंने ये अनुभव किया कि इंद्रियों को आप कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा मैं एक लस्ती बकरा के समान था। प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं, कत्ल खाने के बाद बकरे को अगर इंद्रिय तृप्ति का मौका मिलता है उसका लाभ उठा लेगा, ये नहीं जानता कि मिनटों में मृत्यु आने वाली है। तो भौतिक कार्यों के द्वारा कभी भी आप अपनी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए भक्त का यह भाव है कि अगर हमने संतुष्ट होना है हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए। तो नारद मुनि कह रहे हैं हर स्थिति में संतुष्ट रहो, सुख दुख आदर अपमान सर्दी गर्मी ये सब हमें भोगना पड़ेगा। प्रभुपाद जी के जीवन को आप पढ़ो लीलामृत में, अब देखते हो कि प्रभुपाद जी को कितना संघर्ष करना पड़ा, और प्रभुपाद जी कभी भी हिम्मत नहीं हारे। कभी उन्होंने कहा 20 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं अब मेरे से ये कार्य नहीं हो रहा। प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था क्योंकि गुरु महाराज का आदेश है प्रयास करेंगे तो महाप्रभु जी कृपा से सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो उसी प्रकार हम सबको भी सर्वेंद्रिय इंद्रियों को संतुष्ट कर सकते हो अगर आप भक्ति की विधियों का पालन करो। तो ये जो प्रचार की सेवा है ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। सब सेवाओं में आपको रसोई की सेवा हो सकती है, पुजारी की सेवा हो सकती है, पर सब सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण सेवा है तो प्रचार की सेवा। और प्रचार की सेवा का निचोड़ है ग्रंथों का उपदेश। प्रभुपाद जी ने बहुत ही परिश्रम के साथ इन ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों के विषय में प्रभुपाद जी ने कहा वहां दो भाव होना चाहिए। एक हमें इन ग्रंथों को पढ़ना भी है। इन ग्रंथों को आप पढ़ोगे तो अपने आध्यात्मिक जीवन को ज्यादा मजबूत बना सकोगे। जैसे अगर आप अच्छी खुराक खाते हो तो संभव है अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। तो उसी प्रकार अगर आप इन ग्रंथों को पढ़ोगे तो आपकी आध्यात्मिक बुद्धि तेज होगी। आध्यात्मिक बुद्धि तेज होगी तो माया का विरोध कर सकोगे। तो पहला भाव होना चाहिए कि हमने इन ग्रंथों को पढ़ना भी है, और दूसरा भाव क्या, हमें इन ग्रंथों को दूसरों को भी देना है। क्यों? क्योंकि इसमें दिव्य ज्ञान है। तो ये जो प्रचार की सेवा है, खास करके ग्रंथों के वितरण की सेवा, या जैसे आप बुक मैराथन बुलाते हो, ये सेवा क्यों की जा रही है? पतितों का उद्धार करने के लिए। अगर आज आप देख रहे हो कि इस संस्था के भक्त बढ़ते जा रहे हैं, उनका मूल कारण क्या है? इन ग्रंथों का प्रभाव। प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था कि इन ग्रंथों के माध्यम से लोगों का उद्धार होगा, इसलिए प्रभुपाद जी ने अनेक पत्रों में कहा क्या, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, ग्रंथों को बांटो, चाहे आपकी लाइफ एम्बिशन की सेवा हो, कॉलेज प्रीचिंग हो या बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, हम सब का भाव क्या रहना चाहिए, लोगों को इन ग्रंथों के साथ जोड़ना। लोग इन ग्रंथों को पढ़ेंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे। तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, वही ग्रंथों का मैराथन अभी शुरू हो, इसमें हम सबको जुड़ना चाहिए। भगवान ऋषभदेव कहते हैं एक अंधा व्यक्ति जब गलत रास्ते पर चल रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसके हाथ को पकड़कर उसे सीधे रास्ते में जोड़ देता है। तो उसी प्रकार भगवान ऋषभदेव कहते हैं जैसे एक अंधे बुद्धिमान व्यक्ति अंधे व्यक्ति को गलत रास्ते से निकालकर ठीक रास्ते में जोड़ता है, उसी प्रकार एक जो भक्त है अंधे व्यक्तियों को जोड़ता है ठीक रास्ते में लाकर। दूसरे शब्दों में ये ग्रंथ लोग पढ़ेंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे। तो इन जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, प्रभुपाद जी कहते थे दीज आर लाइक टाइमलेस बॉम्ब्स, किसी समय भी इनका प्रभाव आ सकता है। एक हमारे भक्त थे जो कह रहे थे, मैंने उनसे पूछा भक्त कैसे बने, तो कह रहे थे उनकी बहन ने एक गीता खरीदी थी 4 साल पहले, खोला भी नहीं कभी, 4 साल बाद किसने खोला, पढ़ना शुरू किया, उनका प्रभाव पड़ा। तो अनेक उदाहरण है। कई बार हमारे भक्त घर घर जाते हैं प्रचार करने के लिए। एक घर में पहुंचे दिल्ली में, जो जिस व्यक्ति ने कहा मैं अभी थोड़े घंटों में आत्महत्या करने वाला था, आप आ गए, फिर उसने गीता का उपदेश पढ़ना शुरू किया और अब अच्छा भक्त बन गया। तो इन ग्रंथों के प्रभाव से प्रभु जी ने कहा इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है, कोई एक श्लोक पढ़ेगा तो अपने जीवन को सुधार सकेगा। फिर प्रभु जी ने आगे कहा एक श्लोक नहीं, एक शब्द भी पढ़ेगा और समझेगा तो अपने जीवन को सुधारेगा। तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, ये सेवा का पालन किया जा रहा है किस लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए। और अगर आप किसका उद्धार करना चाहते हो तो ये माध्यम। तो हम सबको उत्साह के साथ इस सेवा में जुड़ना चाहे। रूपक गोस्वामी जी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य। बौद्धिक कार्य में आप देखते हो बौद्धिकवादी व्यक्ति अत्यंत उत्साहित है, किस लिए? बौद्धिक सुविधाओं के लिए। तो भक्त भी उत्साहित रहते हैं, क्यों नहीं, हम किसकी सेवा करें, भगवान की सेवा। नित्यानंद हरिदास ठाकुर जब प्रचार कर रहे थे, प्रचार करते करते कहां गए, जगाए मलाई को प्रचार किया उन्होंने, और मलाई ने क्रोधित होकर क्या किया, पत्थर फेंका जिसके द्वारा उनके माथे से खून बहने लगा। महाप्रभु पहुंच गए सुदर्शन चक्र के साथ, पर नित्यानंद ने रोक दिया। उन्होंने कहा यह है आज की स्थिति, वो आज लोग अत्यंत पतित हैं। प्रभुपाद जी जब पश्चिम देश में गए, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड जंगल से गुजर कर जा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने हाथी शेर अनेक पशुओं को नचाया और जीप से हरि नाम का उच्चारण करवाया। तो इसी प्रकार श्री प्रभुपाद जी जब पश्चिम देश में गए, उन्होंने देखा समाज की पतित स्थिति, प्रचार करके लोगों का उद्धार किया। जब प्रभुपाद जी अमेरिका बोस्टन में पहुंचे थे तो वहां की स्थिति देखकर उन्होंने एक कविता लिखी जिसमें उन्होंने कहा हे भगवान आप मुझे इधर ले तो आए हो पर कौन सुनेगा आपके संदेश को। फिर आगे उन्होंने कहा पर राधा रानी जी की असीम कृपा से हर कार्य संभव है। तो आज समाज की स्थिति क्या है, लोग अत्यंत पतित हैं, पर हमें उनका उद्धार करना है। जैसे आप सब का उद्धार कैसे हुआ, किसी ने आपको प्रचार किया है ना, किसी ने आपको निमंत्रण दिया, कोई आपके स्कूल में आया, कोई आपके कॉलेज में आया, कोई आपके घर में आया, आपने ग्रंथ पढ़ा इस प्रकार, और आपने हंसते हंसते निर्णय किया कि हमें जीवन को सुधारना है। तो जैसे आपका उद्धार हुआ है, आपने दूसरों का भी उद्धार करना है। जो वैष्णव है उस सबको सुखी देखना चाहता है, और अगर आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हो, और थोड़े समय पहले आप सबने हाथ उठाया था कि आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हो, कोई मन बदला तो नहीं, अभी भी प्रिय बनना चाहते हो, तो ये है माध्यम प्रचार करने का। कई बार भक्त पूछते हैं कोई शॉर्टकट नहीं है भक्ति के लिए, तो ये है शॉर्टकट, आप प्रचारक बना। तो ये जो ग्रंथों का मैराथन है इसमें आप सब जुड़ोगे, कौन कौन जुड़ेगा, सब। तो ये अक्सर हम लोग रेलवे स्टेशन में जाते थे, और पिछले साल भी सुविधा नहीं थी रेलवे स्टेशन में जाने के लिए, जो दूसरे व्यापारी लोग हैं जो पैसा खिला देते हैं वो जा सकते हैं, पर जो भगवान का संदेश दे रहा है उनको नियम दिखाया जाता है। खैर हम घबराएंगे नहीं, अनेक साधन है भगवान का प्रचार करने का। एक है शॉप टू शॉप, दुकान दुकान जाकर, और विदेशों में भी हमारे भक्त करते हैं। पर हमें भूलना नहीं चाहिए ये जो ग्रंथों का मैराथन हो रहा है ये सारे विश्व में हो रहा है, सिर्फ भारत में ही नहीं। आप अगर इस समय लंदन मॉस्को किसी मंदिर में जाओगे आप देखोगे मंदिर बिल्कुल खाली है, कोई है ही नहीं। कहां है सारे भक्त, सड़कों में प्रचार करने के लिए, और सड़कों में प्रचार कर रहे हैं। तो वहां इस समय अत्यंत ठंड का मौसम है, बॉम्बे में तो बड़ा हेवनली वेदर, बॉम्बे में तो दिसंबर में पूरे साल का सबसे अच्छा मौसम है ना, ज्यादा विदेशी लोग भारत दिसंबर में आते हैं, भारत में ये सबसे अच्छा मौसम है, पर विदेशों में ये सबसे गंदा मौसम है। विदेशों में बर्फ है -10 -20, साइबेरिया में -50, इतनी बर्फ थी कि हवाई जहाज उड़ नहीं पाए कल। पर उस वातावरण में भी इस्कॉन के भक्त घर घर जा रहे हैं, सड़कों में जा रहे हैं, ग्रंथों को बांटने के लिए। क्यों? क्योंकि केवल एक ही भाव। प्रभुपाद जी ने कहा, अगर तुम मुझे संतुष्ट करना चाहते हो डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, और वो चाहते हैं कि लोगों का उद्धार हो। तो आप सब भक्तों से निवेदन है कि आप भी उत्साह के साथ प्रयास कीजिए इन ग्रंथों को बांटने के लिए। ग्रंथों के माप बांटने के अनेक माध्यम है। एक तो है 1-to-1, आप स्टॉप लाइट करो, घर घर जाओ, दुकान दुकान जाओ। दूसरा है, आप सब जिनकी जान पहचान है कोई व्यापारी से, बिजनेसमैन से, तो आप गीता स्पॉन्सर भी करा सकते हो। कई बार लोग हमें मिलते हैं जो कहते हैं, हम गीता बांटना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सब सुखी बने, पर स्वामी जी हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप उन्हें कह सकते हो, हम आपके बिहाफ पर आपकी तरफ से गीता बांट सकते हैं। लोग स्पॉन्सर करते हैं, स्पॉन्सरशिप के अलग फॉर्म है गीता दान। तो आप गीता बांट सकते हो स्कूलों में, जेलों में, हॉस्पिटल में। तो अनेक साधन हैं जिनके माध्यम से आप लोगों को जोड़ सकते हो। और जैसे हमने स्पष्ट कहा, ये जो प्रचार की सेवा है कठिन सेवा है, क्योंकि ये कठिन सेवा है, इसमें आपको सबसे ज्यादा कृपा भी प्राप्त होती है। जैसे बौद्धिक समाज में कठिन नौकरी है जो ज्यादा तनख्वाह मिलती है। हाँ, आप फैक्ट्री में काम करोगे और अगर कोले की माइन में काम करोगे तो 10 गुना ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, वहां ज्यादा खतरा है। तो जिस चीज में ज्यादा खतरा है, जो कार्य ज्यादा कठिन है, उसमें ज्यादा कृपा भी मिलती है। तो खास करके आप सब भक्तों से निवेदन है, आप जुड़िए। जो हमारे गृहस्थ भक्त हैं, वो भी अक्सर बड़े उत्साह से जुड़ते हैं इस मैराथन में। और जब भगवान देखते हैं कि ये भक्त प्रयास कर रहा है मेरे संदेश को आगे बढ़ने के बढ़ाने के लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और भगवान ये भी कहते हैं, जो प्रयास करते हैं मुझे इसमें सेवा करने के लिए, अगर उनमें कुछ कमी भी हो तो मैं उसे दूर कर देता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु जी का आदेश है, प्रभुपाद जी की हार्दिक इच्छा थी, जब प्रभुपाद जी पश्चिम देशों में गए, उन्होंने भक्तों को कहा डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। जो अमेरिकन भक्त थे, उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कैसे ग्रंथों को बांटा जाएगा, कोई अंदाजा नहीं था। पर प्रभुपाद जी बार बार कह रहे थे डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। किताबों का छापने का लाभ जब है, जब आप आगे इनको बांटोगे भी। अगर केवल छापोगे और गोडाउन में रखोगे तो क्या फायदा। तो जो अमेरिकन भक्त थे, वो सोच रहे थे कैसे ग्रंथों को बांटा जाए, क्योंकि इतिहास में सबसे पहली बार कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ, लोगों ने गीता भगवतम को देखना शुरू किया। पर आगे बांटना उन लोगों को जिनका बैकग्राउंड है क्रिश्चियन और मुसलमान, ये तो बड़ा कठिन काम था। पर भक्तों को पूरा विश्वास था, प्रभुपाद जी कह रहे थे हमें दिमाग लगाने दो। तो दो भक्त हरी नाम से लौट रहे थे सैन फ्रांसिस्को में, और रास्ते में रुके पेट्रोल लेने के लिए गाड़ी में, $10 का पेट्रोल लिया उन्होंने। और फिर एक भक्त का ने सोचा, मैं $10 देने की बजाय ये कृष्णा बुक छप के आई है जापान से, ये क्यों नहीं बेचने की कोशिश करूं। तो उसने उस पेट्रोल पंप के मालिक से कहा, $10 देने के बजाय कैन आई गिव यू दिस बुक। तो उस व्यक्ति अमेरिकन था मालिक, तो उसने कृष्णा बुक को देखा, बड़ा प्रभावित हुआ, ओके आई बाय दिस। तो ये पहली किताब उन्होंने बेची थी सड़क में। फिर भक्तों को लगा, अगर ये एक आदमी ले सकता है तो और क्यों नहीं ले सकते है? तो वो इस प्रकार प्रयास करते गए, और फिर जो हुआ इतिहास, आज लाखों की संख्या में विदेशों में भी लोग इन ग्रंथों को ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों में असली शिक्षा। तो आप सबसे निवेदन है आप जुड़िए इस सेवा में। ये जो आज का श्लोक पढ़कर सुनाया था, ये श्लोक आप सबको कंठस्थ कर लेना चाहिए। कंठस्थ करोगे तो क्या है, दयाया सर्वभूतेषु, नारद मुनि कह रहे हैं भगवान को संतुष्ट करना है तो तीन चीजों की आवश्यकता है, और ये तीनों विधि बहुत अवश्य है। एक है दया प्रचार, दूसरा है संतुष्ट। संतुष्ट रहो, हम कई बार भक्ति में जुड़ जाते हैं बस संतुष्ट नहीं रहते, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मोबाइल ही नहीं चाहिए हमें, तो सबसे अच्छा मोबाइल चाहिए। तो संतुष्ट रहो, फिर सर्वनिंद्रिय पर मन और बुद्धि को संतुष्ट में लाओ, कंट्रोल में लाओ। ये नहीं कि आप इंद्रियों के दास है हो और आप भक्ति भी चाहते हो। भक्ति चाहते हो तो माया को त्यागना पड़ेगा। जब सनातन गोस्वामी ने उस ब्राह्मण ने संतुष्ट करके एक परस पत्र प्राप्त किया था, फिर उसे पता लगा ये परस पत्र से भी ज्यादा कीमती कोई चीज है, तो वो गए सनातन गोस्वामी के पास, ये परस पत्र से ज्यादा कीमती कोई चीज है, क्योंकि अगर ये सबसे कीमती वस्तु थी तो आपने कच्चे के कूड़े के डब्बे के नीचे क्यों रखा था। तो सनातन ने कहा है, तो पहले ये पत्र परस पत्र को फेंको। फिर उन्होंने क्या दिया, हरि नाम। तो अगर हमें हरि नाम चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, भगवान के धाम लौटना चाहते हो, वैकुंठ धाम लौटना चाहते हो जहां की किसी प्रकार का क्लेश नहीं है, आपको क्या करना है, मन बुद्धि इंद्रियों को वश में लाना है, जो संभव है अजी साधना के माध्यम से। तो चाहे आप गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो या ब्रह्मचारी, महाप्रभु जी का आदेश सबके लिए, बोलो कृष्णा, बाजो कृष्णा, करो कृष्णा सिग्नल। और आज कलयुग इतना गहरा है, अब बोलोगे तो लोग भूल जाएंगे। प्रभुपाद जी ने कहा आप किसी को संदेश दोगे वो सुनेगा भूल जाएगा, पर अगर आप ग्रंथ दोगे तो वो पढ़ेगा, फिर से पढ़ेगा और दूसरों को देगा पढ़ने के लिए। तो ये ग्रंथों के विद्यन की सेवा में जुड़िए, आप सब निमित्त मात्र बनिए भगवान के संदेश को आगे पहुंचाने के लिए। और ये मैराथन किस लिए किया जा रहा है, भगवान की प्रशंसा के लिए। और जो भगवान देखते हैं ये भक्त प्रयास कर रहे हैं मेरे संदेश को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं और बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा आप ये सेवा कर सको। आपसे तो ये निवेदन है, उषा के साथ सेवा में सब जुड़िए और दूसरों को भी जुड़िए। हरे कृष्णा। Rajhari, you want to say a few words? Few words to encourage people. Say a few words.
Hare Krishna. So, pehle मैं जब ज्वाइन किया था 84 में, हम संकीर्तन ऑफिस का देखभाल करते थे और हम लोग का पास 5 बस था और बॉम्बे में 5 पार्टी था, तो भक्त लोग का बहुत कंपटीशन था। उस टाइम भगवत गीता का लेकिन कम था, क्योंकि भगवत गीता प्रिंट होता था, बाइंडिंग होता था, तब इधर आएगा तो सब लोग का, भक्त लोग का अर्ली मॉर्निंग मतलब 5 बजे मंगल आरती के बाद सब किताब लेके बाहर जाते थे। लेकिन अभी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का इतना अच्छा सिस्टम बनाया तो किताब 5-6 महीना पहले पूरा उधर रहता है, तो किताब के लिए कुछ तकलीफ नहीं है। और हमारा मैनेजमेंट में प्रसाद हम सब कुछ व्यवस्था करते हैं और सब भक्त लोग उत्साह के साथ जाके संकीर्तन करना चाहे, क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे प्रभुपाद का प्रिय है। अगर प्रभुपाद हमारा संस्था का संस्थापक आचार्य है तो उनको अगर खुश करना है तो हम लोग सब लोग प्रभुपाद का किताब वितरण करना चाहिए। जितना भक्त ब्रह्मचारी कांग्रीगेशन डिवोटी गृहस्थ लोग सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस साल महाराज ने हम लोग को 2.5 लाख गीता वितरण करने के लिए टारगेट दिया है, तो सब लोग उत्साह के साथ करना चाहिए। हरे कृष्ण।
मैं उदाहरण के लिए दिल्ली में आधे से ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे गृहस्थ भक्त करते हैं, जो नफ्स से थोड़ी छुट्टी लेते हैं, मॉल लगाते हैं, ये लगाते हैं, और ये गृहस्थ भक्त भी बड़े उत्साह से करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इन ग्रंथों के द्वारा लोगों का उद्धार हो रहा है। लोग नरक में जा रहे हैं, जहर पी रहे हैं, भक्त भाग के जाते हैं, कहते हैं कृपा करके जहर मत पियो, अमृत पियो। कई तो कहेंगे हाँ अमृत पियेंगे, पर कई कहेंगे नहीं जहर पीने लो, हम खुश हैं। क्या किया जाए, तो प्रयास करना हमारे हाथ में है, नतीजा हमारे हाथ में नहीं। पर जब आपके प्रयास को देखकर भगवान आपको पूरा मार्क्स देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन?
हरे कृष्णा। हरे जी, जैसे कि अभी ज्यादातर घर में मांसाहार मदिरा ये सब चलता है, तो हम प्रचार करने जाते हैं तो बहुत से आदमी को पूछते हैं, तो उनका लेने का इच्छा रहता है, तो हम उनसे पहले ये भी बोलते हैं उनको, जो हमारे हमारे धर्म का सबसे बड़ा ये ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, ये हमारे घर में जरूरी भी होता है, तो वो यही जवाब देता है। जैसे हमारे घर में मैं नहीं पीता हूँ, जैसे मेरा भाई पीते हैं।
ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। अगर किसी घर में मांसाहार हो रहा है, शराब हो रहा है, तो भी हम कहेंगे गीता लो। आप विश्वास नहीं करोगे, पश्चिम देशों में हमारे भक्त कत्ल खाने में जाकर भी किताबें बेचते हैं। मैं जानता हूँ, कैनेडा में हमारे भक्त कत्ल खाने में जाकर भी बेचते हैं, क्योंकि हमें सबका उद्धार करना है। पर आप लोगों को ये कह सकते हो कि जो गीता है आपको इस साफ अच्छे स्थान में रखना, आपको जानकर खुशी होगी कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अनुवाद 70 से अधिक भाषा में हो गया है। आज कोई प्रसिद्ध भाषा नहीं है जिसमें आप गीता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भारत की तरह सब भाषा में है। एनी मोर क्वेश्चंस? कोई भक्त अपनी रियलाइजेशन बोलना चाहता है? और कोई प्रश्न नहीं? एनीवन वांट टू से रियलाइजेशन? आप प्रचार करने गए कैसे? हाँ बोलो जल्दी।
हरे कृष्णा। महाराज जी, अभी चेंबूर में रथ यात्रा था, तो मैं एक घर में गया और वो माता जी जगन्नाथ जी को देख रही थी, तो मैं गया और माता जी को बोला माता जी बुक्स लीजिए, तो ला नहीं नहीं मेरे पास तो है ऑलरेडी। तो फिर मैंने उसे कहा कि ये गीता तो देखिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं गीता तो है मेरे पास, क्या भागवत है? तो बोला इसमें गीता में ही भागवत भी है। तो वो माता जी ने भागवत बोला अच्छा ठीक है मुझे दे दो, तो लेकिन मुझे कुंती महारानी की किताब भी उसे देनी थी क्योंकि वो लेडीज थी। तो मैंने उसे कहा कि उसने पूछा कितना प्राइस है इसका, तो बोला 200 रुपया और ये कुंती महारानी की किताब फ्री है इसके साथ, तो उसने वो किताब भी ले ली। तो मैंने कुछ भक्तों को बताया कि इस तरह टेक्निक से मैंने किताब उसे दिया, तो उसने कहा कि तुमने ये बहुत गलत किया, तुमने झूठ बोल के किताब दिया, तो ऐसा करोगे तो इस संस्था का नाम भी खराब होता है, तो इससे क्या डिस्करेज होना चाहिए या?
गीता दे रहे तो बोलो गीता दे रहे हो, भगवतम दे रहे हो तो बोलो भगवतम।
लेकिन उसको उसने कहा इसमें भागवतम है क्या गीता में, तो प्रभुपाद की भगवत गीता में भागवत
में भगवत का संदेश है, भगवत का संदेश है परम भगवान की सेवा करना, शुद्ध भक्ति करना, और गीता का भी वो ही निर्णय है। ओके, तो सब जुड़ोगे मैराथन में? सब थोड़ा त्याग करना पड़ेगा सबको, दफ्तर से थोड़ा समय लेना पड़ेगा, जो ब्रह्मचारी हैं उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी से पूछा एक शिष्य ने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैराथन? प्रभुपाद ने कहा लेस स्लीपिंग, लेस ईटिंग एंड मोर प्रीचिंग. तो मैराथन के महीने में प्रस कम समय सोने के लिए और खाने के लिए, और ज्यादा समय किसके लिए? प्रचार. प्रचार के मैदान में हमें 9 बजे सुबह तक निकल जाना चाहिए और फिर रात को. प्रभुपाद ने कहा ये जो मंदिर हैं ये बेस हैं जहां से भगवान की सेना ऑपरेट करती है प्रचार के लिए. अब सब जुड़िए इस सेवा में. ओके, हरे कृष्णा.